प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्र को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनके केशनी तथा सुमती दो रानियां थीं। पहली रानी का एक पुत्र था और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में वो पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व चर रहा है। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर पुकारने लगे, जिससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही वो 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अपने मरे हुए भाइयों के चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पहला पुत्र अंशुमन जब मुनि आश्रम में पहुंचा, तो महात्मा गरुड़ ने उनके भस्म होने का सारा किस्सा बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूरा करो, उसके बाद यह कार्य करना। पुत्र ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर जाकर सगर से पूरा वृतांत बताया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ना ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए, सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु वे सफल ना हो सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए कोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उन्होंने गंगा जी की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो लाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालना बहुत मुश्किल है। क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार को तथा वेग को संभाल पाएगी? ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पृथ्वी में गंगा का भार एवं वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए यही उचित होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर जी की जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। गंगा को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को भी बहुत अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की प्रसन्नता पूर्वक तपस्या की। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गिरी। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी, उसी मार्ग में ऋषिराज, जहू का आश्रम तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रार्थना करने पर उन्हें दोबारा जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तार कर उन्हें मुक्ति दी। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा, तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमय साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं बल्कि मुक्ति भी देती है।